मिराओ जहरान, जगह का नाम है, मिराओ जहरान के मुकाम पर पहुँच कर जब फौजी कैंप लगाया गया तो बतौर मसलहत रात को सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हर सिपाही अपने लिए लहत आग रोशन करे। अबू सुफियान बिन हर्ब, हकीम बिन हिजाम और बुदैल बिन वरका जैसे अकाबर देखभाल के लिए निकले। बुलंदी से 10,000 चूल्हों को रोशन देखा तो सकते में रह गए कि इतना बड़ा लश्कर मक्का के दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। पास ही से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु गुज़रे। आवाज़ें पहचान कर अबू सुफियान को पुकारा, बातचीत हुई। हज़रत अब्बास ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़ौज लेकर आ पहुँचे, अब कुरैश की खैर नहीं। अबू सुफियान ने पूछा कि अब चारेकार क्या है? उसने कहा, मेरे साथ खच्चर पर बैठ जाओ और चलकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की जाए। खच्चर आगे बढ़ा तो फौजी तरीक से कदम कदम पर सिपाहियों ने पूछा, कौन जा रहा है? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तारुफ कराते तो रास्ता मिल जाता। करीब पहुंचे तो हज़रत उमर ने देख लिया और अबू सुफियान को पहचान कर पुकार उठे, क्यों दुश्मन खुदा, आज तुझ पर काबू मिला। दौड़े दौड़े कत्ल की इजाज़त लेने नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अब्बास ने भी खच्चर तेज़ कर लिया। हज़रत उमर ने पहले पहुँच कर अपनी बात कही और हज़रत अब्बास ने अपना मौक़िफ़ बताया कि मैं अबू सुफियान को पनाह दे कर लाया हूँ। इस मौके पर यह बातचीत हुई। ज़रा सोचिए, क्या क्योस का वो वक्त था ना। मुसलमानों को ये नहीं पता कि कौन मुस्लिम हो चुका है, कौन नहीं है। यानी अब उनको ये लग रहा है कि ये लोग जान बचाने के लिए इस वक्त इस्लाम की ढाल के अंदर आ रहे हैं। क्या बातचीत हुई? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? क्यों अबू सुफियान, क्या अब भी तुमको यकीन आया कि खुदा के सिवा कोई और माबूद नहीं? अबू सुफियान बोले, कोई और खुदा होता तो आज हमारे काम आया होता। सुबहान अल्लाह, कितना जुबानी जुमला। मुशरिक से मुशरिक, बड़े से बड़े मुशरिक को भी पता लग जाता है कभी ना कभी कि हमारे खुदा झूठे हैं। ये लग बात है कि बाद में फिर मत मारी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या इस बात में कुछ शक है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अबू सुफियान बोले, इसमें कदरे शुबा है। 21 साल हो गए, अभी तक शुबा नहीं दूर हुआ। देख लीजिए, ये भी एक बात है। बहरहाल नबी सल्लम के चचा ने इसकी कमज़ोर नफ्सियात को समझते हुए तरकीबन कहा कि छोड़ भी दो, अब सीधी तरह इस्लाम कबूल कर लो और सुबह तक मक्का का सबसे बड़ा लीडर हालात से मजबूर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो चुका था। इस्लामी कैंप ने मक्का में फ़ौज के दाखिले से कबल अबू सुफियान को ऐसे लतीफ़ अंदाज से हिरासत में रखा कि इसे महसूस तक ना हुआ। सुबह शहर में दाखिले के लिए फ़ौज ने कदा के रास्ते मार्च किया। हज़रत अब्बास नबी सल्लम के इरशाद से अबू सुफियान को एक टीले पर ले गए ताकि वह एक बार जैश इस्लाम की अजमत का मंजर देख ले। सबसे पहले गफ्फार, फिर जुहैना, बुदेम, सुलेम और सबसे आखिर में अंसारी दस्ते अपने अपने झंडे लिए गुजरते रहे। अबू सुफियान हर दस्ते के बारे में पूछता रहा। सात बिन उबादा इस मुकाम से गुजरे तो सिपाहियाना जोश में आकर, जिसके पस मंजर में वसी तारीही कशमकश मौजजन थी, पुकार उठे, क्या क्या यौम यौमुल मुलाहमा, आज तो जंग का दिन है। मुलाहमा जंग, गुमसान, यानी दू बदू आमने सामने लड़ाई जो होती है। और क्या कहा? अल्यौमा, आज के दिन काबा का माहौल मार्के के लिए खोल दिया जाएगा। यानी आज का दिन दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए अल्लाह ने वो हुरमत को उठा देना है जो कि इससे पहले मौजूद थी। और ये वो वक्त होता है कि जो अल्लाह के हुक्म से कुछ वक्त के लिए मक्का में से जो तीर तलवार उठाना था वो उसकी इजाज़त दे दी गई थी। आप जानते हैं ना कि मक्का में तो घास भी नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कोई मुजी जानवर है तो उसको नहीं किराया जा सकता। तो आपने क्या फरमाया? अल यौमा तहल्लुल काबा, यानी आज काबा हलाल हो जाएगा। आखिर में नबी सल्लम की सवारी सादगी की शान के साथ गुजरी, जिसके आगे आगे ज़ुबैर बिन अवाम अलम उठाए हुए थे। नबी सल्लम को सात बिन उबादा के नारे का इल्म हुआ तो फ़ौरन इनसे अलम वापस लेकर इनके बेटे के सपुर्द कर दिया और फरमाया कि आज का दिन काबा की अजमत का दिन है और बिर्रो वफा का दिन है। इस फिक्रे में नबी सल्लम ने अपनी फातिहाना पॉलिसी का ऐलान किया जो फो करम पर मबनी थी। फिर ये ऐलान आम कर दिया गया कि जो कोई भी मस्जिद हराम में दाखिल होगा या अबू सुफियान के घर में चला जाएगा और जो कोई भी मुकाबले के लिए हथियार न उठाएगा इसके लिए अमन है, बशर्ते कि किसी काबिले ताज़ीर जुर्म का मुजरिम ना हो। खुद अबू सुफियान ही ने मक्का में आगे बढ़कर इस ऐलान को बआवाज़ बुलंद पुकारा। ये सुनकर हिंद बिन उतबा जो जोजाए अबू सुफियान थी इनकी मूछ खींच कर चिल्लाई, कह बनी कनाना इस कमबख्त को कत्ल कर दो, ये क्या बोल रहा है। वो गालियाँ देती रही, लोग जमा हो गए। अबू सुफियान ने कहा, ऐसी बातों से कुछ हासिल ना होगा क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने की ताब अब किसी में नहीं। जब शहर में नबी सल्लम का दाखला हुआ तो दुनिया भर के फातहीन के बरक्स सर मारे इज्ज़ के अल्लाह के सामने इस तरह झुक रहा था कि पेशानी जावे को छू रही थी और जुबान सूरत फतह की तिलावत में मसरूफ थी। क्या पता चला, जब फतह हो तो जश्न नहीं बल्कि सजदा, सर झुका ले। देखिए, इंसान के नफ्स पे शो ऑफ होता है, दिखावा, दिखाना चाहता है, देख लो हम जीत गए, देख लो हमें ये हो गया वो हो गया। नहीं, हवा लगती है, नज़र लगती है, शर आता है, आंखों में आ जाता है इंसान, इसलिए हमेशा नींदों को छुपाना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। दादी से नेमत करें, शुक्राना अदा करें, सदका दें, नफिल पढ़ें, दुआएं मांगें, लेकिन बड़े बड़े जुमले कभी ना बोलें, फ़ख्रिया जुमले कभी ना बोलें, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी रग़बत दिलाने के लिए इंसान को तذکرہ करना होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि कभी भी खुद पसंदी नहीं आनी चाहिए। आपकी आवाज़ से कभी ये ना लगे कि आप अपने ही ऊपर मान कर रहे हैं। फिर इसी तरह इकरमा बिन अबू जहल, सुफान बिन उमैया और सुहैल बिन अमर ने खंदमा पहाड़ में कुरैश के चंद कोताह अंदेशों बाशों को जमा करके आमादे शरारत किया। खम्मास बिन कैस बिन खालिद बिन लोगों से मिल गया। दो सहाबी कुर्स बिन जाबिर अल-फहरी और खुनैस बिन खालिद बिन रबी लश्कर से जुदा होकर किसी दूसरे रास्ते जा रहे थे कि इस टोली ने दोनों को शहीद कर दिया। हज़रत खालिद को इत्तला मिली तो उन्होंने फ़ौरन इसकी सरखूबी की। 12 आदमी खेत रहे और बाकिया भाग निकले, यानी 12 मारे गए, जो भागे थे उनमें खुमास भी था। ऐसी एक और छोटी सी टोली शहर में मुज़ाहमत करने के लिए जमा हुई। नबी सल्लम को मालूम हुआ तो हज़रत अबू हुरैरा के ज़रिए अंसार का दस्ता तलब किया। इनको ये मंज़र दिखाया कि देखते हो इनकी शरंगेज़ी, यानी एक तरफ तौफ़ रहमत का दरिया ठाठे मार रहा है और फातह क़ुव्वत खून का एक कतरा भी बहाने से गुरेज कर रही है, और दूसरी तरफ यानी ये बुरे मिजाज के लोग हैं कि इसे नियाम करदा तलवारों को लहराने पर मजबूर कर रहे हैं। हुक्म दिया कि ये मुज़ाहमत करें तो इनका पूरी तरह सफाया कर दिया जाए। अबू सुफियान को नबी सल्लम के इस हुक्म की इत्तला हुई तो वो दौड़े दौड़े पहुँचे और इल्तमास की, यानी इल्तजा की, ए अल्लाह के रसूल, कुरैश पहले ही तबाह हो चुके हैं, यानी अब आपको वो रिश्तेदारियों के वास्ते भी दे रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं कि इमोशनल ट्रैप। कहने लगे कि कुरैश तो पहले ही तबाह हो चुके हैं, ऐसा ना हो कि इनका नामो निशान ही दुनिया से मिट जाए। हल्की सी मुज़ाहमत के बाद अशरार मार खार कर बिखर गए, यानी बहुत बड़ी जंग नहीं हुई, खून नहीं बहा। और अल्लाह के नबी के अचानक आने के पीछे ये हिकमत थी कि आप नहीं चाहते थे कि बहुत खून बहा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अफ़ो करम को देखकर अंसार में बास लोगों ने ये चहमे गोयाँ फैलाई कि आखिर आप पर अपनी कौम और अपने वतन की मोहब्बत गालिब आ ही गई। नोट कीजिए, लीडर पे शक चंद लम्हे कहीं क्यों ना हो, लेकिन दिल की बात ज़ुबान पे आ गई। हम जो सोचते हैं ना वो ज़रूर ज़ुबान पे आता है, चाहे चंद सेकंड के लिए, चंद जुमलों में उगल देते हैं ना, फिर वो बात कभी वापस नहीं जाती। तो दुआ किया करें कि दिल की बात ज़ुबान पे ना आए और दिल साफ रहे, यानी ऐसे ही ना, हाँ जी अपने ख़ानदान के लोग थे ना, हाँ जी अपनों में जो आ गए, अब हमने इतनी कोशिशें की, कुर्बानियाँ की, और अब चूँकि मक्का फतह हो गया तो बस अब इनको तो अपने ही अच्छे लगेंगे। ये टोन याद रखिए, सब अपने होते हैं, अगर अल्लाह के नाम पे जुड़ते हैं ना तो नए पुराने अगले पिछले सब अपने होते हैं। कभी भी अपने दिल में कोई नेगेटिव ख्याल ठहरने नहीं देना चाहिए। दरअसल इन्हें यह अंदेशा हुआ कि कहीं मुख्स ने इंसानियत इनसे जुदा होकर अब मक्का वालों में न रहने लगें और वह अपनी महबूब हस्ती के कुर्ब से महरूम हो जाएं। देखिए, ये है तो मोहब्बत, लेकिन फिर भी मोहब्बत की वजह से भी दिल में शक, या कह लीजिए कि हल्का सा गुमान आ गया। इंसान थे ना। आपने इनसे खिताब किया और फरमाया, अल्लाह की कसम, ऐसा नहीं है, मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। मैंने अल्लाह की तरफ और तुम्हारी तरफ हिजरत की। आप मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। अंसार पर इक्कतारी हो गई और उन्होंने माजरत तलब की। अल्लाह रसूल ने इनकी माजरत कबूल की। कितना जज्बाती वक्त होगा वो, शायद इसको आप महसूस करें कि ना। लेकिन याद रखिए कि हम जब अल्लाह के रास्तों में निकलते हैं ना, तो हम ना तो अपनी यादों से जान छुड़ा सकते हैं, ना हम अपने माजी से खुद को काट सकते हैं। मुस्तकबिल के ख्वाब देखते देखते माजी के साथ रिश्ता भी जुड़ जाता है। आजकल चूँकि यूके से उठकर यूएसए में आई, देखिए मेरे लिए तो सभी एक ही जैसे शहर है ना, लेकिन जब से मैं यूएसए में आई हूँ, मेरी मेमोरी ऐसे लगता है पलट आई। मैं अपने आप को 10-12 साल पीछे लेती हूँ। तकरीबन एक एक बंदे का नाम जो उस दौर में मेरे साथ थे, एडमिन, स्टूडेंट्स, शहरों के नाम, इलाकों के, मेरी ज़ुबान पे हैं। ये लोग हैरान होते हैं, मैं खुद भी हैरान होती हूँ सच्ची। अभी भी मैं 3 साल बाद, 4 साल बाद कोई नया बंदा था, एकदम उसका नाम मेरी ज़ुबान पे आता है और अल्लाह जानता है मैंने उनको कभी याद नहीं किया होगा। लेकिन इस तरह से ओन दौड़ कर बातें पलट के आती हैं, हर शहर के साथ यादें, इलाके, बिल्कुल जैसे आप पाकिस्तान जाएं तो आपको पाकिस्तान की गलियां, शहर, वहां रहते थे, ये होता था, उधर जाते थे, ये अपना था, ये बुला था। अमेरिका में आकर बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है मैं पाकिस्तान आ गई हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरा, इतने शहरों, इतने लोगों से अल्लाह ने मिलाया, किधर किधर कदम लगे, यानी वो एक पूरी हिस्ट्री है। तो मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसी कल मैं सोच रही थी, वैसे सोचने का वक्त भी नहीं मिलता। सोचने कुछ लग जाऊँ तो सोचती हूँ, नहीं इस वक्त कुछ और कर लूँ तैयारी अगले लेक्चर की। लेकिन बहरहाल सिर्फ एक बात है कि मैं सोच रही थी कि अगर मैं एक बुक लिखूँ तो शायद उसकी कई जिल्दें मुझे लिखनी पड़ें। हर मुल्क, हर जगह के लोग, यानी ये भी एक अल्लाह की रहमत है कि आपकी ज़िंदगी में इतनी डाइवर्सिटी हो। कुछ लोग तो जहाँ पैदा हुए वहीं चले गए दुनिया से, तो अल्लाह ताला हमें ज़ाया ना करे। हर जगह का एक हक है, और वाकई में अमेरिका में आकर अपने आप को महसूस करती हूँ कि इस मुल्क का मेरे ऊपर बड़ा हक है। मुझे बहुत कुछ मिला इधर से, अल्लाह ने मुझे इधर से जो दिया शायद किसी को भी नहीं दिया होगा। लोग तो पता नहीं कौन से बेनिफिट्स लेते होंगे, लोगों को पता नहीं क्या कुछ मिलता होगा जो कभी हमने राहें ही नहीं देखी आज तक, अल्लाह जानता है। अमेरिका से लेकर नॉर्वे तक, जहाँ जहाँ गए, एक पैनी, एक पैसा, एक रुपया, एक चवन्नी, अल्लाह की कसम, कभी हुकूमत से नहीं ली, गवर्नमेंट से नहीं ली। जो हमारी जिम्मेदारी है वो अदा करते हैं, उस मुल्क के रूल्स एंड लॉज को पूरा करते हैं। हक है जो वो ले सकते हैं, मना नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अल्लाह ने अपना रखा है। दुआ करें अल्लाह हमें दूसरों दरों का मोहताज ना करें। एक दुआ की हुई है कि अल्लाह कभी अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। तो फिर अल्लाह जैसे बुरी करता है वैसे कोई कर भी नहीं सकता। अल्लाह तो ताने भी नहीं देता, इल्ज़ाम भी नहीं देता, धमकियां भी नहीं देता, तंग भी नहीं करता हमें बार बार। अपने लिए दुआ करें, ए अल्लाह मुझे अपने दर का मोहताज कर ले, मुझे नहीं रुसवा होना, मैं अब किसी के आगे शर्मिंदा नहीं हो सकती। फिर देखिए, और मैं इस वक्त भी अल्लाह को गवाह बना के कहूँगी कि अल्लाह हमारे अगले सारे मामलों में तू हमें काफ़ी हो जा, हमें किसी इंसान, किसी तरीके, किसी स्ट्रेटेजी पे ना डाल। कोशिश हम करेंगे, कर भी रहे हैं, करते ही रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन तू खुद हमें काफ़ी हो, हम क्या तुझे पकड़े, तू हमें थाम ले। मुझे तो सीरत हमेशा यही दिखाती है, कुछ भी रिसोर्सेस ना हो, अल्लाह का साथ हो तो बिलाखिर मक्का फतह हो जाता है। बहरहाल अल्लाह के नबी की बात बड़ी इमोशनल थी, उससे मैं भी इमोशनल हो गई, लेकिन अनसार पर इक्कतारी हो गई। माजरत की, सॉरी, हमने आपके बारे में ये सोचा। और मोहब्बत इतनी थी कि वो अल्लाह के नबी को कभी वापस मक्का वालों के पास नहीं देना चाहते थे। ये कुर्ब की बातें थी, ये दिल की बातें थी। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि शहर में क़याम कहाँ फरमाएंगे, देखिए भी ये भी तो एक क्वेश्चन होता है ना कि रहना किधर है, क्या अपने आबाई घर में? तो नबी सल्लम ने बड़ा दर्द भरा जवाब दिया कि अकील ने हमारे लिए घर छोड़ा ही कहाँ है कि इसमें उतरूँ। सुभान अल्लाह। अकील कौन थे? चचा के बेटे। नबी सल्लम का अलम हजून यानी जन्नत मुअल्ला में नसब हुआ, झंडा होता था ना, और यही क़्यामगाह तय पाई। पहले आप इस तारीखी मुकाम खैफ में गए, जहाँ कबीले के साथ नज़रबंदी के दिन गुजारे थे, फिर हरम पहुँचे। खासुल खास रफका का एक हलका साथ था, हिजरे अस्वद का इस्तेलाम किया यानी छू के सलाम करना, हाथ में कौस लिए हरम में नसब शुदा एक एक बुत के पास जाकर पुकारते, हक आ गया और बातिल सिटक गया, कुल जाल हक व जहकल बातिल और इन्नल बातिला का नजहू का, सूरत बनी इसराइल की आयतें। और बातिल को तो मैदान छोड़ना ही था, आयत 81 बनी इसराइल है। कौस के इशारे से एक बुत गिर गया, फिर काबा की कुंजी मंगवा कर दरवाज़ा खुलवाया, अंदर हज़रत इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें बनी थीं और इनके हाथों में पांसे के तीर दिखाए गए। इनको मिटाने का हुक्म देते हुए फरमाया, अल्लाह कुफ्फार को गारत करे, ये दोनों अल्लाह के पैगंबर थे, इन्होंने जुआ कभी नहीं खेला था, बाद में आपके हुक्म से वो तमाम असनाम यानी बुत जो थे वो तोड़ दिए गए जो मुद्दतों से आसपास नसब थे। फिर आप नमाज और जिक्र में मसरूफ़ रहे, मस्जिद के सामने हजूमे आम जमा था और लोग अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए मुस्तरब थे। इनसे आपने खिताब फरमाया, एक अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, सोचिए, इसका कोई शरीक नहीं। इसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, इसने अपने बंदे को मदद दी, इसी अकेले ने तमाम लश्करों को शिकस्त दी। आज तमाम किब्रो गुरूर, खून के तमाम दावे, मालों के तमाम मुतालबे मेरे कदमों के नीचे हैं। अलबत्ता हरम काबा की तवल्लियत और हुज्जाज की आप रसानी के ओहदे इससे मुस्तस्ना हैं। ए कुरैश, अल्लाह ने अब तुम्हारी जाहिलियत के गरूर और नसब के फ़ख्र को मिटा दिया। बड़ा मान था इनको। तमाम इंसान आदम की औलाद हैं और आदम मट्टी से पैदा किए गए। फिर कुरान की आयत पढ़ी, लोगों मैंने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कबीलों और ख़ानदानों में इसलिए तकसीम किया है कि तुम बाहर दगर पहचाने जाओ, यानी लितआरफू बैनकुम। लेकिन मोअज़्ज़ज़ अल्लाह के नज़दीक वही है जो परहेजकारी में पेश पेश हो, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बिला शुबा अल्लाह दाना व बाखबर है, सूरह हुजरात आयत 13 है। फिर एक कानूनी ऐलान किया, अल्लाह ने शराब की खरीदो फरोख्त हराम कर दी। फिर अल्लाह के नबी ने पूछा, तुमको मालूम है मैं तुमसे क्या सलूक करने वाला हूँ? इन अल्फाज के गूंजते ही जुल्म, मकर, तशद्दुद और खून ख्वारी की वो सारी गंदी तारीख कुरैश की निगाहों के सामने से एक फिल्म की तरह गुजर गई होगी जिसे उन्होंने 20-21 बरस में तैयार किया था। इनके ज़मीर फट जाने को होंगे। बेबसी और नदामत के आलम में वो लोग पुकार उठे, अखुन करीम व इब्ने अखुन करीम, आप शरीफ भाई हैं और एक शरीफ भाई के बेटे हैं। जवाबन आवाज़ आई, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इस हबूफान तुम तुलका, तुम पर आज कुछ गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। क्या कुरैश की तारीख जुल्म और जंग को सामने रखते हुए कोई शख्स भी इस जवाब की तवक्को कर सकता है? मगर जो कोई भी इस रहमत आलम की शान करीमी को समझता हो वह नबी सल्लम से इसी जवाब की उम्मीद बांधेगा। कोई और होता तो आज अकड़ कर मक्के में दाखिल होता, एक एक वाक्य का इंतकाम लेता, चुन चुन के इन अफराद को तलवारों का लुकमा बनाता जिन्होंने ज़रा भी कोई ज्यादती की होती, मफतूह शहर में कत्ले आम करा देता। लोगों के माल और औरतों की किस्मतें नीलाम पर चढ़ गई होती, लेकिन फातह चूँकि मुहसिन इंसानियत था इसलिए उसने ज़मीन पर कब्ज़ा हासिल करने के साथ साथ इंसानों को फतह करना चाहा। इसको हाईलाइट करें, वो कहते हैं ना, जो दिलों को मोह ले वही फातह आलम है। ज़मीन के टुकड़ों को तो बहुत सारे लोग फतह कर लेते हैं, असल यह है कि दिलों के टुकड़ों को फतह किया जाए। और जिस्मों पर काबू पाने से बढ़कर दिलों को हाथ में लेने की कोशिश की। हाईलाइट करें, ए अल्लाह हमें भी इसी की तौफीक दे, हम लोगों के दिलों में रहें। घरों में रहने से क्या होता है? असल जगह जो रहने की है वो किसी का दिल है, और जब दिलों में जगह होती है ना तो हर बंदा अपना घर खोल देता है आपके आगे कि आप हमें इज्जत बख्शें, आप हमारे घर में रहिए, आप बैठिए। सच्चाई यही है। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक कि महाजरीन से कहा कि वो अपने अपने मकानों और इमलाक से दस्तबरदार हो जाएं। शान लुत्फ एहसान का इससे बड़ा मुजाहरा और क्या होगा कि काबा की कुंजी क़यामत तक के लिए इन्हीं उस्मान बिन तलहा को अता की, जिनसे एक बार दरे काबा खुलवाने की ख्वाहिश अल्लाह के नबी ने दावत के इब्तदाई दौर में की थी तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया था। इस मौके पर आपने मुस्तकबिल पर निगाह जमाते हुए उस्मान से फरमाया, एक दिन आएगा कि ये चाबी मेरे इख्तियार में होगी। ये देखिए लीडरशिप, ऐसे हालात में जहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्या कह रहे हैं कि एक दिन चाबी मेरे हाथ में होगी। अल्लाह हमें भी तेरे वादों पे इतना ही यकीन हो जाए कि एक दिन ये चाबी हमारे हाथ में होगी। और वमा ज़ालिका अलल्लाह भी अज़ीज़, ये अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। यहाँ ज़रा सा चाबी पे भी गौर करें, कितनी बड़ी नेमत है कि आपके पास इस जगह की चाबी है। देता है कोई आपको? सामने वाला डोर खोल सकते हैं आप? थर्ड फ्लोर पे किसी की चाबी है आपके पास? तो इस चाबी की कदर और इज्जत, जब आप इसका हक अदा करेंगे ना, अल्लाह आपको और भी इख्तियार देगा। और अल्लाह हमें इन चीज़ों की कदर की तौफीक अता फरमाए। एक दिन आएगा कि ये चाबी मेरे इख्तियार में होगी और मैं जिसे चाहूँगा ये दे दूंगा। उस्मान की निगाह इतनी दूरस कैसे होती? उस जगह शायद उस रोज़ तमाम अफराद कुरैश हलाक हो चुके होंगे, यानी जिस दिन आपके हाथ में चाबी आ गई गोया के कुरैश की तो हलाकत हो गई। फरमाया, नहीं, वो तो कुरैश की सच्ची इज्जत का दिन होगा। इस मुकालमे को जहन में ताज़ा कर लीजिए तो तसव्वुर यही कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरा कोई भी होता तो अपने इख्तियार दिखाने के लिए लाजमन कुंजी उस्मान से लेकर किसी और को देता। हम होते तो यही करते, लाओ तो मैं बता दूँ। नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की चाबी हासिल करने के लिए बनी हाशिम की तरफ से हज़रत अली जैसे जिगरी अजीज़ तक की दरख्वास्त से सरफे नज़र कर लेते हैं। यानी हज़रत अली ने ख्वाहिश की थी कि मुझे चाबी दे दें, और काबे की चाबी हमेशा के लिए पुराने हाथों में रहने देते हैं। इसको हाईलाइट करें, ओल्ड इज़ गोल्ड। नए लोग जितने भी होंगे एक पुराने का मुकाबला नहीं कर सकते। ये भी एक अल्लाह सुबहाना ताला ने जज्बाती वाबस्तगी रखी होती है हम सब की अपनी जगहों और अपनी चीज़ों के साथ। नबी सल्लम ने कुंजी देते हुए जब उस्मान बिन तलहा को बरसों पहले की वो बात बतौर लतीफ़ा याद दिलाई तो वो पुकार उठे कि बेशक अब अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया, आज नेकी और वफा का दिन है। इसके बाद नबी सल्लम के हुक्म से हज़रत बिलाल ने काबे पर चढ़कर अजान दी। ये अजान गोया इस्लामी इनकलाब की कामयाबी का ऐलान था। वही काबा जहाँ अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह का नाम पुकारना जुर्म बन गया था, और इससे रोकने के लिए कितनी ही सख्तियाँ नबी सल्लम और साथियों ने झीलीं। आज इसकी बुलंदियों पर से बाआवाज़े बुलंद अल्लाह की बड़ाई पुकारी जा रही थी और कोई कुव्वत न थी जो मुज़ाहिम हो सके। सुभान अल्लाह, अल्लाह के वादे कितने सच्चे हैं। अल्लाह हमारे साथ भी अपने वादों को सच्चा करते। इस लम्हे अबू सुफियान बिन हर्ब, अताब बिन उसैद और हारिस बिन हिशाम जैसे इकाबिर यानी बड़े काबा से मिले हुए एक गोशे में बैठे अपनी हरी हुई बाजी का तसव्वुर कर रहे थे कि आज हम हार गए। अताब ने जले दिल से कहा कि अच्छा हुआ कि अल्लाह ने उसैद को इस आवाज़ के सुनने के लिए ज़िंदा न रखा, यानी पहले ही फौत हो गए। नबी सल्लम इन लोगों के पास पहुँचे और जो जो बातें उन्होंने की थी इनके सामने दोहरा दी। ये लोग शर्मिंदा हुए, यानी अल्लाह ने वही के ज़रिए आपको ये खबरें सुना दी। याद रखिए, हम जब दो लोग बैठ के बात करते हैं ना, हम सोचते हैं किसी को नहीं पता लगेगा, अल्लाह खुद ही बात फैलाता है। ये भी अल्लाह का एक करम होता है ताकि हम बेकार बातें ना करें और बहुत ज़्यादा ना करें। फिर नबी सल्लम ने हमें हानि के मकान पर गुसल करके 8 रकत नमाज बतौर शुक्राना फतह पढ़ी। सुभान अल्लाह, तो फतह की शुक्र है ना के नारे। फतह के दूसरे रोज़ कोहे सफ़ा पर से नबी सल्लम ने दूसरा खिताब आम फरमाया। आज भी ऐसे ही होता है ना, कोई लीडर इलेक्ट होता है, सदर वजीर, तो फिर वो आवाम से खिताब करता है। पहले अल्लाह की हमदो सना की, फिर मुख्तसर कलिमात में हरम की हुरमत को बयान किया और उसे हमेशा के लिए कायम कर दिया और इसके अहकाम बयान किए। वाज़ह रहे कि मक्का की हुरमत को इतनी बड़ी इनकलाबी फतह के लिए सिर्फ एक दिन बल्कि पूरा दिन भी नहीं मजबूरन खोला, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मक्का के चंद सर फिरेऊ बादशाहों ने मुस्लिम सिपाहियों के ख़िलाफ़ पेश दस्ती करके से मजबूर कर दिया कि वो इनका कलाव कमा करने के लिए कुव्वत से काम ले। लेकिन जो ही ये मजबूरी ख़त्म हुई, नबी सल्लम ने दूसरे रोज़ हरम की हुरमत को हमेशा के लिए बहाल करने का ऐलान फरमाया। यूँ तो आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और इस ऐलान ने दिलों को ऐसा मुसख़्खर किया कि किसी में ताबे मुकावमत ना रही। यानी मुजरिमीने खास के बारे में नाम लेकर आपने फरमाया कि ये लोग जहाँ भी पाए जाएं कत्ल कर दिए जाएं। वाज़े रहे कि मक्का पर कब्ज़ा करने और इसे ज़ेरे नज़्म लाने के लिए चंद रोज़ मार्शल लॉ नाफिज रहा। यानी आज की ज़ुबान में ये मार्शल लॉ के इख्तियार फ़ौज के पास चला जाता है, वो जो भी करे। यही तमाम इख्तियार फ़ौजी गुमान के हाथ में थे और नबी सल्लम बहसियत सिपाह सलार अफवाज ही के ये हुक्म जारी किया था आपने, जिसकी नौयत वैसी है जैसी कि आज देखते ही गोली मार दो, शूट एट साइट, नहीं जहाँ भी देखो गोली मार दो की होती है। इस फहरिस्त मुजरमीन में चंद मर्दों और चंद औरतों के नाम थे, लेकिन नबी सल्लम के अफवो हेल्म ने इनमें से भी अक्सर की जान बख्शी कर दी। ज़्यादा से ज़्यादा चार मुजरमीन को सजाए मौत दी गई। एक तहकीकी राय ये भी है कि सिर्फ एक शख्स, और उसका नाम क्या था, अब्दुल उज्जा इब्ने खंजल को हलाक किया गया। ये शख्स मुसलमान हुआ वसूलिए सदकात के लिए, एक और मुस्लिम साथी की मायत में इसे भेजा गया। सफ़र ही में नज़ा शुरू हो गया, झगड़ा हुआ और मुस्लिम साथी को कत्ल करके नीज सदके के मवेशियों को भी साथ लेकर भाग आया। दोहरे भारी भारी फौजदारी जराइम इसके जिम्मे थे। यानी आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि एक दिन तो फिर गुजरना ही पड़ता है ना उन जगहों से कि जिनका हक नहीं दिया होता। कब तक, आखिर कब तक? वो वक्त आ गया था कि आज अल्लाह ताला ने इस चीज़ को कैसे रखा था। सुफान बिन उमैया इस्लामी तहरीक के कट्टर मुखालिफों में थे, भागकर यमन जाते हुए जिद्दा पहुंचे थे कि उमैर बिन वहाब जहमी नबी सल्लम से माफ़ी की मंजूरी लेकर जिद्दा से वापस लाए, बाद में इस्लाम इख्तियार किया। इकरमा बिन अबू जहल भी यमन भाग गए थे। इनकी जौजा उम्मे हकीम बिनतुल हारिस अबू जहल की भतीजी थी, खुद मुसलमान हुई और अपने शौहर के लिए नबी सल्लम से माफ़ी की मंजूरी ली, खुद जाकर लाएं। इकरमा को जब माफ़ी की खुशखबरी मिली तो इन्हें सख्त ताज्जुब हुआ कि इन जैसे मुखालिफ को भी नबी सल्लम ने माफ़ कर दिया। हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। क्या क्या दिन था, उस दिन कितने दिल साफ हुए होंगे, उस दिन कितने लोगों को पता चला होगा कि ये आज का दिन आना था और आ गया। और याद रखिए ये होता है, बहुत सारे लोग खूब तकलीफ़ें देते हैं इस्लाम के नाम पे मुसलमानों को, लेकिन एक दिन फिर उनको माफ़ियाँ मांगनी पड़ती हैं। और आप देखें कि इकरमा को माफ़ी की खुशखबरी मिली होगी, क्या उसके दिल की कैफियत होगी। अब्दुल्ला बिन साद बिन अबने सराह मुसलमान थे और इनको किताबत वही का मौका भी मिला, मगर मुनहरिफ हो गए और मुखालिफ मुहासे तआवुन करने लगे। इसको नोट करें, इन्ना लिल्लाह। आप देखिए कि वही लिखने का काम भी करते थे, इतना बड़ा काम, लेकिन जब बंदे पे गलबा होता है ना नफ्स का, छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि इस्तेख़फ़ाफ़ के लिए उन्होंने ये भी कहा कि वही तो दरअसल मुजबर आती है, नऊज़ुबिल्लाह। मोहम्मद सल्लम तो मुझसे सुनकर लिखवा लेते थे, जुर्म सख्त था, लेकिन हज़रत उस्मान की तरफ से बाइसरारे सिफारिश होने पर नबी सल्लम ने बहसियत हाकिम आला इनको मुआफ़ी दे दी। माफ़ी के बाद फिर ये मुसलमान हुए। ये भी देखिए कैसे वक्त आते हैं, इसका पता चलता है कि इस बड़े मुखलसीन के भी बाज़ दफ़ा दिल पलट जाते हैं, लेकिन अगर अंदर खैर हो तो अल्लाह पलटा ले आता है। मुकैस बिन सुबाबा मुनाफिकाना तौर पर इस्लामी जमात में शरीक हुए और धोखे से एक अंसारी को कत्ल करके भाग गए। इस इकदाम का मुहरक ये हुआ, यानी मोटिवेशन क्या बनी उसकी, कि मुकीस का भाई गलती से इस अंसारी के हाथों मारा गया। नबी सल्लम ने इसकी दियत दिलवा दी, इसके बावजूद इसने अंसारी को कत्ल किया। इर्तदाद और फरेब दही के अलावा तनहा ये इर्तकाबे कत्ल ही सजाए मौत के लिए काफ़ी वजह जवाज था। हबार बिन अलअसवद वो शख्स है जिसने दूसरी मुखालिफाना हरकात के अलावा हज़रत ज़ैनब पर हिजरत के वह हमला कर कितनी अजियत दी थी कि इनका हमल साकित हो गया। पहले छुपा रहा, फिर हुदी पेश होकर आजजी से एतराफ़े कसूर किया और नबी सल्लम की खिदमत में सख्त शर्मिंदगी का इजहार किया। साथ ही कलमा इस्लाम की कबूलियत का ऐलान किया। नबी सल्लम ने फरमाया, मैंने खिबार को माफ़ कर दिया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल इसमें बामुसम्मा वहशी सामने आया और इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हज़रत हमज़ा के कत्ल का हाल सुना, इसका जुर्म भी माफ़ किया और इसे मशवरा दिया कि तुम मेरे सामने ना आया करो कि इससे ज़ख़म ताज़ा होते हैं। यहाँ से देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे और आपको तकलीफ़ होती थी कुछ चीज़ों से। ये शख्स इस्लाम लाने के बाद जंगे यरमूक में शरीक हुआ और इसका ख़ास कारनामा ये है कि मुसलमा कज़ाब को इसने तीर से हलाक किया। कहता था कि मैंने सबसे अच्छे आदमी को कत्ल करके जो गुनाह किया है, अब सबसे बुरे आदमी को कत्ल करके कफ़ारा अदा कर दिया है। अब्दुल्ला बिन जबरी मशहूर जाहली शायर जिसने शेर की कुव्वत को इस्लाम के ख़िलाफ़ इश्तियाल फैलाने में इस्तेमाल किया, पेश हुआ और इस्लाम लाया और माफ़ी दे दी गई। काब बिन जुहैर ने भी इस्लामी तहरीक और इसके दाई के ख़िलाफ़ हजवी शायरी का महाज गरम कर रखा था। 9 हिजरी में अपने भाई के साथ हाजिर हुआ, इस्लाम कबूल किया और तलाफ़ी के सच्चे जज्बे से कसीदा बांध साथ पेश किया, यानी फिर आपके तारीफ़ी कलेमात किए। नबी सल्लम ने माफ़ी दी और अपनी चादर इनाम में अता फरमा दी। क्या मैं मक्का के ज़माने में एक बार नबी सल्लम खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे कि फ़ुज़ाला बिन उमैर छुप कर इरादे कत्ल से आया। नबी सल्लम खुद ही पास जा पहुँचे और उसके दिल की बात बता दी। फ़ुज़ाला इस गिरफ्त पर शर्मसार हुआ, आपने पूछने के लिए कहा और इसके सीने पर हाथ फेरा। अचानक इसके दिल की दुनिया बदल गई। इरादे कत्ल के मुजरिम से ये सलूक और किससे मतवक्का हो सकता है, यानी आप देखिए कि कैसे कैसे उस वक़्त मंजर हुए होंगे। और ये सारा कुछ आपके मेरे पास किताबों में है, उन लोगों के पास तो ये सब कुछ पेश आ रहा था। क्या वो वक्त होगा, कैसा दिन होगा। औरतों में सबसे बड़ी मुजरिमा हिंद बिनते उतबा थी जिसने सरगर्मी से मुखालफतें की थीं और हज़रत हमज़ा का मुसला किया था, यानी उनकी डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था, बल्कि इनका कलेजा चबा गई थी। चेहरा छुपाने के लिए निकाब पहनकर हाजिर खिदमत हुई। हालात से मजबूर होकर ये इस्लाम कबूल करने आई, लेकिन इस लम्हे भी ढिटाई से अजीब अजीब टेढ़ी टेढ़ी बातें नबी सल्लम से की। मुकालमा कुछ यूं हुआ, हिंद कहती हैं, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमसे किन बातों का इकरार लेते हैं? आपने कहा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। हिंद कहने लगी, ये इकरार आपने मर्दों से तो नहीं लिया, मगर खैर हमें भी ये मंजूर है, यानी कि आपने तो ये मर्दों से लिया था, क्या तो क्या ये हमें भी करना पड़ेगा? आपने फरमाया, चोरी ना करो। हिंद बोली, मैं अपने शोहर अबू सुफियान के माल में से 2-4 दिरहम कभी कभी निकाल लेती हूँ, मालूम नहीं कि ये भी जायज़ है कि ना जायज़। आपने फरमाया, औलादों को कत्ल ना करो। हिंद बोली, हमने तो यानी बचपन में इनको पाला, बड़े हुए तो जंगे बदर में आपने ही इन सबको कत्ल कर डाला, अब आप जाने। और वो यानी बड़ी फिलबदी थी और बोल बढ़ती थी हैं। जैसा कुछ कबूले इस्लाम ये था, ज़ाहिर है कि फिर ये गुस्ताखाना अंदाज़े कलाम कोई दूसरा भी होता अगर अल्लाह के नबी की जगह तो इसे गवारा ना करता, लेकिन आपका बेपाया हिल्म था जिससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा था। अल्लाह अकबर। इसी तरह करतना इब्ने हंजल की लौंडी थी और नबी सल्लम के ख़िलाफ़ हजवें गाया करती थी, यानी आपकी पैरोडी करती थी। पता के वक्त भाग गई, बाद में तौबा करके वापस आई और इस्लाम में दाखिल हो गई। एक औरत पर सिलसिले कसास कत्ल हो गई। चंद मर्दों और औरतों के मुतल्लिक अहादीस और कुतुबे सीरा की रिवायात में खासा इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन कतईत से इनमें से किसी की सजाए मौत पाना साबित नहीं किया जा सकता। ऐसे कट्टर दुश्मनों के लिए ऐसी आम माफ़ी की मिसाल इस दर्जे की फतह कामिल हासिल करने के बाद किसी और की ज़िंदगी से तारीख पेश नहीं कर सकती। तो ये था फतह मक्का का इब्तदाई हिस्सा। क्या कुछ उस दिन हुआ होगा, क्या हालात थे, अल्लाह ताला हमें इससे हिकमत सीखने वाला बना दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।